नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण का फील्ड वर्क आज से शुरू, 24 मई तक चलेगा अभियान। चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर सरकार ने कहा, भ्रामक सूचना या अफवाह पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में नागरिक सुरक्षा के तहत कल रात एयर अटैक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ब्लैकआउट लागू कर विभिन्न क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का हुआ अभ्यास। और बढ़ती गर्मी के मद्देनजर हरिद्वार और नैनीताल जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण का फील्ड वर्क आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 24 मई तक चलेगा, जिसके तहत हर द्वार दस्तक कार्यक्रम में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। जनगणना निदेशक एवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 10 से 23 अप्रैल के बीच राज्य में 62,000 से अधिक लोगों ने डिजिटल स्वगणना पूरी कर ली है, जिसमें सबसे अधिक भागीदारी देहरादून जिले की रही। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल प्रणाली से की जा रही है। इसके लिए राज्य में 20,000 से अधिक प्रगणक और 3,500 से अधिक पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। जनगणना निदेशक ने लोगों से अपील की है कि वे प्रगणकों को सही जानकारी दें और साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहें। चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में एक और FIR दर्ज की गई है। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग थाने में यह कार्रवाई केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं पर गलत जानकारी प्रसारित करने के आरोप में की गई है। एक रिपोर्ट।
एक सोशल मीडिया वीडियो में यह दावा किया गया था कि एक वृद्ध श्रद्धालु को स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद सुविधा नहीं मिली और VIP प्रोटोकॉल के कारण आम श्रद्धालुओं की अनदेखी की जा रही है। जांच में यह जानकारी भ्रामक पाई गई। वास्तविक घटना में 22 अप्रैल को गुजरात के एक श्रद्धालु के स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केदारनाथ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। इसके बाद प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर से शव को गुप्तकाशी भेजा। प्रशासन का कहना है कि वीडियो में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर लोगों को भ्रमित करने और छवि खराब करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा से जुड़ी किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की जा रही है और ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग से लेकर धाम क्षेत्र तक चिकित्सा इकाइयों, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, बेस कैंप अस्पतालों और हेली व एम्बुलेंस रेस्क्यू सेवाओं के माध्यम से लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। पिछले 3 दिनों में कुल 6,500 से अधिक तीर्थ यात्रियों को OPD और आपातकालीन सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिनमें 24 अप्रैल को लगभग 5,000 श्रद्धालुओं का उपचार किया गया। इसके अलावा अब तक करीब 3,000 यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। रेस्क्यू व्यवस्था के तहत अब तक 4 यात्रियों को हेली सेवा से उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया, जबकि 13 यात्रियों को एम्बुलेंस और 7 को डंडी कंडी के माध्यम से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में लगातार छापेमारी की जा रही है। एक रिपोर्ट।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे 334 के बहादुराबाद क्षेत्र में कई ढाबों और होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर खाद्य लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों की कमी मिलने पर संचालकों को नोटिस जारी किए गए, साथ ही खराब तेल के उपयोग और नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा चंडी मंदिर से गैंडी खाता तक हाईवे पर स्थित ढाबों और होटलों की भी जांच की गई, जहां बिना लाइसेंस संचालन और फूड लाइसेंस प्रदर्शित नहीं करने पर नोटिस जारी किए गए। प्रशासन ने सभी संचालकों को साफ सफाई बनाए रखने, कूड़े का उचित निस्तारण करने और रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संजीव कंडवाल।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप उत्तराखंड की प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। देहरादून में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों के तहत आयोजित एयर अटैक मॉक ड्रिल के दौरान जिले में निर्धारित मानकों के अनुसार त्वरित कार्यवाही की गई। रात करीब 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र सक्रिय कर दिया गया और शहरी क्षेत्रों में ब्लैकआउट कर दिया गया। घंटाघर, ISBT, आराघर और डील रायपुर क्षेत्रों को अभ्यास के लिए चिन्हित किया गया। एक रिपोर्ट।
मॉक ड्रिल के दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी कंट्रोल रूम में तैनात रहे और स्थिति की लगातार निगरानी की गई। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भी राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया। निर्धारित समय के दौरान रात 10:05 से लेकर 10:35 तक ब्लैकआउट सुनिश्चित किया गया। अभ्यास के तहत ISBT क्षेत्र में बम विस्फोट की स्थिति दर्शाई गई, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की स्थिति बनाई गई और उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। आराघर क्षेत्र में बम मिलने की सूचना पर विस्फोटक ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम ने उसे निष्क्रिय किया। ड्रिल के दौरान सेना, NDRF, SDRF, अर्धसैनिक बल, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया। सभी स्थानों पर नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तैनात रहे। आकाशवाणी समाचार देहरादून के लिए समाचार कक्ष से मैं सिमरन बिंजोला।
हरिद्वार में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 27 अप्रैल से 26 मई तक सभी स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्री प्राइमरी से कक्षा 5 के विद्यालय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे, जबकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक चलेंगी। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देश को निर्देश दिए हैं कि नई समय सारिणी का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही विद्यालयों में वाटर बेल बजाने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और तेज धूप के दौरान बच्चों से खेलकूद व बाहरी गतिविधियां न कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। उधर नैनीताल जिले में भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदला गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल के अनुसार हल्द्वानी, रामनगर और कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य विद्यालयों में 15 मई तक नई समय सारिणी लागू रहेगी। इसके तहत प्रार्थना सभा सुबह 6:45 पर होगी और विद्यालय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित किए जाएंगे। सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य अतिथि गृह के निर्माण प्रक्रिया तेज हो गई है। अयोध्या फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाले इस परिसर का सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ आर राजेश कुमार ने निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। करीब 54,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बनने वाला यह अतिथि गृह उत्तराखंड से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह स्थान श्रीराम मंदिर, फैजाबाद शहर और अयोध्या एयरपोर्ट से नजदीक होने के कारण यात्रियों के लिए सुविधाजनक रहेगा। सरकार का कहना है कि यह अतिथि गृह केवल VIP तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम श्रद्धालुओं के लिए भी किफायती दरों पर आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, जिससे यात्रा के दौरान ठहरने में आसानी हो। परिसर को उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हुए लोक कला, लोक संगीत और पारंपरिक आयोजनों के लिए भी विकसित किया जाएगा। नई टिहरी में पहली बार प्रवासी पंचायत 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासियों के अनुभव और सुझाव लेकर पलायन की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के तत्वाधान में विकास भवन के समीप आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। आयोग के सदस्य राम प्रकाश पैन्यूली ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ना है, ताकि वे अपने गांव के विकास में योगदान दे सकें।
जो हमारे प्रवास पर जो लोग चले गए हैं, गांव से बाहर रहते हैं, लेकिन वो गांव के प्रति उनके मन में संवेदना है, गांव की सेवा करने का उनके मन में संकल्प है, वो गांव आते जाते हैं, गांव में कुछ करते भी हैं और गांव में लौट करके आना भी चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों को हम गांव के विकास से जोड़ करके प्रवासी पंचायत के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण का फील्ड वर्क आज से शुरू। 24 मई तक चलेगा अभियान। चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर सरकार ने कहा, भ्रामक सूचना या अफवाह पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में नागरिक सुरक्षा के तहत कल रात एयर अटैक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ब्लैकआउट लागू कर विभिन्न क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का हुआ अभ्यास। और बढ़ती गर्मी के मद्देनजर हरिद्वार और नैनीताल जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।